उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्नों को आपके साथ खोलते हैं और भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़ी गतिविधियां, वहां की सांस्कृतिक झलक, कला और संस्कृति से आपको रूबरू करवाते हैं। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होता हूं मैं आपके बीच कमल कुमार प्रजापति।
पूर्वोत्तर डायरी।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम उत्सवों के रंगों से भरा हुआ है। बैसाख का महीना आते ही देश भर में उत्सवों का रंग शुरू हो जाता है, लोगों में नया उत्साह और उमंग फैल जाता है और देश के हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से बैसाख के इस महीने को सेलिब्रेट किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में भी बैसाख महीने की बहुत धूमधाम होती है। खासतौर पर अगर हम त्रिपुरा और असम की बात करें तो त्रिपुरा में बंगाली पोइली बैसाख उत्सव और असम में बोहाग बिहू, ये बड़े महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं। लोग बढ़ चढ़कर इन उत्सवों में हिस्सा लेते हैं और अपनी रंगीन परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले अपने श्रोताओं को हम लिए चलते हैं त्रिपुरा की यात्रा पर। त्रिपुरा से हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने एक खास रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने चर्चा की है पोइली बैसाख के बारे में। ये एक बंगाली उत्सव है जो बैसाख महीने को सेलिब्रेट करते हुए मनाया जाता है। तो इस उत्सव की क्या परंपराएं हैं, क्या कुछ खास इसमें होता है, आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष का पहला दिन। इस खास मौके का स्वागत करने के लिए त्रिपुरा में 2 शामों तक रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम काव्य लोक नाम की एक संस्था ने आयोजित किया जो कविता पाठ नाटक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए काम करती है। अगरतला शहर के बीचों बीच मशहूर उज्जैनता पैलेस के पास स्थित महारानी तुलसीबती स्कूल का परिसर संगीत नृत्य और खुशियों से भर गया। बंगाली साल आता है और चला जाता है। चैत्र संक्रांति के साथ पुराने साल को विदाई दी जाती है और पोइला बैसाख नए साल का बड़े धूमधाम से स्वागत करता है। कई साल पहले करीब 32 बसंत पहले जब बंगाली साल 1400 आया था तब अगरतला में 3 दिन तक रंग और संस्कृति का शानदार उत्सव मनाया गया था। फिर कुछ समय के लिए यह परंपरा रुक गई, लेकिन लोगों के मन में अपनी पुरानी संस्कृति परंपरा और जीवन शैली को आगे बढ़ाने की इच्छा बनी रही। इसी सोच के साथ काव्यलोक संस्था की स्थापना के 1 साल बाद साल के अंत की विदाई और नए साल के स्वागत को एक साथ मनाने की शुरुआत हुई। साल 2026 में जब बंगाली साल 1432 से 1433 में बदला तब इस परंपरा का 28वां आयोजन हुआ। इस मौके की भावना को संस्था के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सांस्कृतिक अधिकारी शांतनु दास के शब्दों में भी महसूस किया गया।
Among them, Kabbo Lok holds a distinguished for the organization has been running a recitation school for children while also continuously working for promotion and propagation of culture. Among the various activities, the annual farewell to the old year and welcome to the new year festival is a particularly significant cultural event of the Kabbo. This celebration takes place every year on the last day of the month of Chaitra and the first day of new year, the first Vaishakh.
1432 को विदाई और 1433 के स्वागत का यह कार्यक्रम त्रिपुरा की अपनी मिलीजुली संस्कृति का सुंदर उदाहरण था। यहाँ अलग अलग परंपराएं एक साथ दिखी जिसमें कार्यक्रम और भी खास बन गया। जनजातीय गरिया ममिता नृत्य के साथ रविंद्रनाथ टैगोर का एशो हे बैसाख गीत प्रस्तुत किया गया था। साथ ही बिहू नृत्य के जोशीले धुनों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। इस शानदार आयोजन से काव्य लोक के प्रमुख सदस्य और प्रसिद्ध सांस्कृतिक व्यक्तित्व उत्तम चक्रवर्ती भी बहुत खुश नजर आए।
दिस इवेंट ऑफ ours held in the heart of the state has truly fulfilled our effort to celebrate a unique blend of cultures rooted in the soil and closely connected to Bengali heritage. We are proud that across the entire Northeast India there is no other celebration of concluding Bengali year's farewell and welcoming of New Year as well on such a grand scale, even in Kolkata, and even so far spanning 2 days like ours is not seen or known.
इस तरह भले ही यह आयोजन बंगाली कैलेंडर से जुड़ा था, लेकिन काव्य लोक के प्रयासों से त्रिपुरा में यह 2 दिन सांस्कृतिक एकता और भाईचारे का सुंदर संदेश लेकर आए। यह कार्यक्रम अलग अलग परंपराओं को एक साथ जोड़ने और उन्हें एक ही मंच पर मनाने का एक शानदार उदाहरण बना। अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय।
तो पोइला बैशाख उत्सव के बाद अब हम चलते हैं असम। असम में भी बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू बैसाख के महीने में मनाया जाने वाला एक खास उत्सव है, जब खेत लहलहाते हैं और चारों तरफ फसलों की सुगंध महक जाती है तो ये उत्सव पूरे वातावरण में 4 चांद लगा देता है। और इसी माहौल को सेलिब्रेट करने के लिए बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू का पूरे असम में सेलिब्रेशन होता है। पशुओं के सम्मान और पूजा के साथ साथ आपसी मानवीय भाईचारे को प्रदर्शित करता ये उत्सव असम में विशेष महत्व रखता है। ये उत्सव असम में विशेष महत्व रखता है और कई दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में गांव, शहर, हर समुदाय, जाति धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। तो संगीत, परंपरा और रीति रिवाजों के मेल का ये बोहाग बिहू किस तरह से असम में मनाया जाता है, इस बारे में विस्तार से हम आपको ये खास रिपोर्ट सुनवाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं।
असम की धरती पर जब अप्रैल का महीना आता है तब प्रकृति जैसे एक नए जीवन के साथ मुस्कुराने लगती है। खेतों में हरियाली लौटती है, हवा में एक ताजगी घुल जाती है और इसी के साथ शुरू होता है असम का सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत पर्व बोहाग बिहू, जिसे रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि असमिया समाज के जीवन, संस्कृति और भावनाओं का गहरा प्रतिबिंब है। बोहाग बिहू असमिया नववर्ष का प्रतीक है और इसे आमतौर पर 14 या 15 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। ये समय कृषि चक्र में एक नई शुरुआत का होता है, जब किसान आने वाली फसल के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। इसलिए इस पर्व का संबंध केवल आनंद और उत्सव से ही नहीं बल्कि प्रकृति और कृषि से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बोहाग बिहू का उत्सव कई दिनों तक चलता है और इसका आरंभ होता है गोरु बिहू से। इस दिन का विशेष महत्व पशुओं, खासकर गायों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने में है। असम के ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह लोग अपने मवेशियों को पास की नदी या तालाब में ले जाकर स्नान कराते हैं। उन्हें हल्दी और औषधीय जड़ी बूटियों से साफ किया जाता है जिससे उनकी सेहत अच्छी बनी रहे। इसके बाद उन्हें नई रस्सियों से बांधा जाता है और विशेष भोजन दिया जाता है। इस पूरे अनुष्ठान में एक गहरी भावना छिपी होती है, ये स्वीकार करना कि पशु हमारे जीवन और आजीविका का अभिन्न हिस्सा है। गोरु बिहू के बाद मनाया जाता है मनुह बिहू, जिसे मानवों का बिहू भी कहा जाता है। ये दिन सामाजिक मेलजोल, प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। लोग सुबह उठकर स्नान करते हैं, नए और पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन गामोसा का विशेष महत्व होता है। गामोसा असमिया संस्कृति का एक प्रतीक है, जिसे सम्मान और स्नेह के रूप में भेंट किया जाता है। ये केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट और सम्मान का प्रतीक है। मनुह बिहू के दौरान घरों में पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें पीठा, लारू, चीरा और दही प्रमुख हैं। ये व्यंजन चावल, नारियल और गुड़ से बनाए जाते हैं और इनका स्वाद जितना सरल होता है उतना ही गहरा जुड़ाव इनकी परंपरा से होता है। परिवार और पड़ोसी एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और इस अवसर को मिलकर मनाते हैं। बोहाग बिहू का सबसे आकर्षक और जीवंत पक्ष है इसका नृत्य और संगीत। बिहू नृत्य असम की पहचान बन चुका है। युवक और युवतियाँ पारंपरिक पोशाक पहनकर समूह में नृत्य करते हैं। महिलाओं की मेखेला चादर और पुरुषों की धोती गामोसा इस नृत्य को और भी सुंदर बनाते हैं। ढोल, पेपा, गुगोना और टोकारी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर जब नृत्य होता है तो पूरा वातावरण ऊर्जा और उल्लास से भर उठता है। बिहू गीतों में प्रेम, प्रकृति और जीवन की सरल खुशियों का वर्णन होता है। इन गीतों के माध्यम से युवा अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ये केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संवाद है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। बोहाग बिहू का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हुसोरी। इसमें गांव के युवक युवतियों के समूह घर घर जाकर गीत और नृत्य प्रस्तुत करते हैं। बदले में उन्हें आशीर्वाद और उपहार मिलता है। ये परंपरा समाज में एकता और आपसी संबंधों को मजबूत बनाती है। तीसरा दिन गोसाई बिहू के रूप में मनाया जाता है जो आध्यात्मिकता और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये दिन उत्सव के बीच एक शांत और संतुलित भाव लाता है। बोहाग बिहू केवल ग्रामीण जीवन तक सीमित नहीं है। आज के समय में ये शहरों में भी उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और सामूहिक आयोजन इस पर्व को और भी व्यापक बना देते हैं। हालांकि आधुनिकता ने कई बदलाव लाए हैं, लेकिन इस त्योहार की मूल भावना आज भी वही है, प्रकृति के साथ जुड़ाव, रिश्तों में मिठास और जीवन के प्रति उत्साह। असम के लोगों के लिए बोहाग बिहू केवल एक पर्व नहीं बल्कि उनकी पहचान है। ये उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ता है और ये याद दिलाता है कि जीवन की असली खुशी सादगी, सामूहिकता और प्रकृति के साथ संतुलन में है। जब पूरा असम इस उत्सव में डूबा होता है तब हर चेहरे पर एक अलग चमक होती है। ये चमक केवल त्योहार की नहीं बल्कि उस उम्मीद की होती है जो हर नए साल के साथ जन्म लेती है। बोहाग बिहू हमें ये सिखाता है कि जीवन में बदलाव और नई शुरुआत का स्वागत कैसे किया जाए। ये हमें अपनी परंपराओं को सहेजने और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है और शायद यही कारण है कि ये पर्व हर साल उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है जैसे पहली बार मनाया गया हो। यही है बोहाग बिहू, एक ऐसा उत्सव जो प्रकृति, संस्कृति और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगम है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रशांत कुमार।
श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में हमने इस कार्यक्रम में बार बार चर्चा की भी है। पूर्वोत्तर राज्यों के एक रोचक सफर पर आपको लिए चलते हैं। इस रोमांचक सफर में आपको निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत की सैर का एक अनुभव मिलेगा। तो आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, कौन से वो प्रमुख स्थल हैं जो हमेशा हमें खींचते हैं अपनी ओर। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
आज हम भारत के उस हिस्से की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे प्रकृति ने भरपूर सौंदर्य प्रदान किया है। उत्तर पूर्वी भारत, ये क्षेत्र अपने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, रहस्यमय गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यहाँ का तवांग मठ न केवल भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मठ बौद्ध संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर मानो मन को एक अलौकिक शांति मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक और खास जगह है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो जैव विविधता के लिए मशहूर है। ये देश के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां बाघ, तेंदुआ और हिमालयी भालू एक ही जंगल में देखे जा सकते हैं। जंगल प्रेमियों और वन्य जीव फोटोग्राफरों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब बढ़ते हैं असम की ओर, जिसे इसकी चाय बागानों की सुगंध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
असम का कामाख्या मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ सफारी के दौरान हाथी, जंगली भैंसे, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपनी अनूठी संस्कृति और सत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैलियाँ और सरल जीवन शैली पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अब हम मणिपुर की ओर रुख करते हैं, जिसे आभूषणों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की लोकटक झील उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसकी खासियत इसके तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमती कहा जाता है। इस झील के बीचों बीच स्थित केबोल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ दुर्लभ संगाई हिरण पाए जाते हैं। इम्फाल का इमा किथेल या महिला बाजार भी बेहद अनोखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। करीब 500 साल पुराना ये बाजार न केवल खरीदारी के लिए बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता के मिसाल के तौर पर भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं बादलों के घर मेघालय की ओर, जहाँ की हरियाली, झरने और गुफाएं प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। यहाँ का नोह कलिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई करीब 1115 फीट है। मॉनसून के दौरान जब ये झरना पूरे वेग से बहता है तो इसका नजारा अविस्मरणीय होता है। चेरापूंजी और मासिनराम क्षेत्र में स्थित लिविंग रोड ब्रिज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। ये पुल स्थानीय खासी और जयंतिया जनजातियों ने पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़कर तैयार किए हैं और ये सैकड़ों वर्षों तक मजबूती से टिके रहते हैं। प्रकृति और मानवीय कौशल का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब हम मिजोरम पहुँचते हैं, जिसे पहाड़ों के लोगों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। यहाँ के पहाड़ों की चोटियों से दिखने वाला दृश्य मन मोह लेता है। अब चलते हैं नागालैंड, जो अपनी अनूठी संस्कृति और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव पूरे उत्तर पूर्व की संस्कृति का उत्सव माना जाता है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला ये महोत्सव नागा जनजातियों की समृद्ध परंपराओं, नृत्य, संगीत, कला और खान पान को प्रदर्शित करता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का कोहिमा युद्ध स्मारक और संग्रहालय स्थित है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। अब हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर, जो भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो लेकिन इसके सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है।
सदावाना से निया तं
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित उज्जैनता पैलेस राजसी वैभव का प्रतीक है। ये महल अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां त्रिपुरा की कला, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किया गया है। इसे राज्य में स्थित नीर महल रुद्र सागर झील के मध्य स्थित एक भव्य महल है, जिसे त्रिपुरा के महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य ने बनवाया था। ये महल झील के शांत पानी में तैरता सा प्रतीत होता है और इसकी रोशनी रात में झील पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बनाती है। श्रोताओं, उत्तर पूर्वी भारत केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत और हर त्योहार एक कहानी कहता है, चाहे वो अरुणाचल की आध्यात्मिकता हो, असम के चाय बागानों की महक हो, मणिपुर की झीलों का सौंदर्य हो, मेघालय की गुफाओं का रहस्य हो, मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियाँ हो, नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता हो या त्रिपुरा के महलों का शाही वैभव, ये क्षेत्र प्रकृति और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। अगर आपने अभी तक उत्तर पूर्व की यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर जाइए और इस अद्भुत भूमि की सुंदरता को अपनी आँखों से देखिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं कनकलता।
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक तानेबानी की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है वहाँ की जनजातियाँ। पूर्वोत्तर भारत में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं और यही इस क्षेत्र को विशेष भी बनाती हैं। नागालैंड भी विविध जनजातियों का क्षेत्र है और यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इसमें से एक जनजाति है अंगामी जनजाति। तो आज अपने श्रोताओं को हम इस जनजाति की परंपराओं के बारे में, धरोहर के बारे में और साथ ही इनके रहन सहन, खान पान और तमाम जीवन शैली के बारे में आपको इस विशेष रिपोर्ट में बता रहे हैं। हमारी संवाददाता असुनो ने हमें कोहिमा से ये विशेष रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
नागालैंड में कुल 18 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं और हर जनजाति की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इन जनजातियों में अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खियामनी उंगन, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, सुमी, संगतम, तिखिर, यिमख्यूंग, जेलियांग, कचारी, कुकी और गारो शामिल हैं। इन जनजातियों की विविधता उनकी भाषा, परंपराओं, सामाजिक जीवन और पारंपरिक पहनावे में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रंग बिरंगे परिधान, पारंपरिक आभूषण और मन के से बने गहने उनकी सांस्कृतिक पहचान को और भी जीवंत बनाते हैं। इसी कड़ी में आज हम नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति अंगामी नागा समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। अंगामी जनजाति अपनी सशक्त सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के लिए जानी जाती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है, अंगामी लोगों की पारंपरिक भूमि मानी जाती है और आज भी उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। अंगामी जनजाति मुख्य रूप से कोहिमा जिले में बसी हुई है। इस क्षेत्र को चार भागों में देखा जाता है। नॉर्थ अंगामी कोहिमा के उत्तरी क्षेत्रों में रहते हैं, साउथ अंगामी माउंट जापफू की तलहटी के इलाकों में बसे हैं, वेस्टर्न अंगामी कोहिमा के पश्चिमी हिस्सों में पाए जाते हैं, जबकि चाखरो अंगामी दीमापुर और चुमुकेदिमा जिले के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। अंगामी समुदाय की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ये लोग सीढ़ी नुमा खेतों में धान और अन्य अनाज की खेती करते हैं। समय के साथ आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से भी अंगामी समाज जुड़ा है, लेकिन कृषि आज भी उनकी जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। अंगामी जनजाति में ईसाई धर्म का व्यापक प्रभाव देखा जाता है और धार्मिक आस्था उनके सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंगामी समुदाय का प्रमुख पर्व सेक्रेनी है, जो हर वर्ष फरवरी महीने में मनाया जाता है। ये पर्व नए चंद्र वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और लगभग 10 दिनों तक चलता है। सेक्रेनी पर्व के दौरान शुद्धिकरण से जुड़े पारंपरिक अनुष्ठान, सामूहिक आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से समुदाय के लोग अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अंगामी जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा, आभूषणों और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में और जानकारी साझा कर रहे हैं अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रजाओ वोतुओ चात्सु।
The Angami tribe is a major tribe in Nagaland, predominantly settled in the district of Kohima, Chimungedima and Dimapur. There are over 100 Angami Naga villages spread across four ranges, namely northern, southern, western and Chakomang. As a tribe, the Angamis falls under Tengime family. Tengide is a mother tongue of the Angamis. The Angami are one of the first tribes in Nagaland to embrace Christianity, propagated by the American missionaries in the late 18th centuries. Sekreni, celebrated in the month of February, is the premier festival of the Angamis. And the Angamis, also known as Kusani. Mostly Angamis practice terrace cultivation and also zoom cultivation.
अंगामी पुरुषों और महिलाओं के पारंपरिक वस्त्रों की बनावट एक दूसरे से अलग होती है। पुरुष आमतौर पर सफेद रंग की मोहशू और काले रंग की लोहे शॉल पहनते हैं, वहीं महिलाएं मेचला नाम की पारंपरिक लपेटने वाली स्कर्ट और खास डिजाइन और पैटर्न वाली शॉल पहनती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही पारंपरिक आभूषण पहनना पसंद करते हैं। मन के छोटे मुखौटे वाले लॉकेट, चूड़ियां और कंगन अंगामी आभूषणों की खास पहचान है। अंगामी जनजाति अपनी लकड़ी की कारीगरी और पारंपरिक कला के लिए भी प्रसिद्ध है। नृत्य और गीत अंगामी सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। धार्मिक आयोजनों से लेकर सामाजिक समारोहों तक गांव के लोग एक साथ एकत्र होकर पारंपरिक गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियां न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि समुदाय की एकता और सांस्कृतिक निरंतरता को भी मजबूत करती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ मैं विशाल शर्मा।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
पूर्वोत्तर डायरी।